आज हम चर्चा करेंगे, हम जन्म जन्म के लिए अपने खातों में कौन से खजाने जमा करें। तीन खाते बताए बाबा ने और बहुत सारे खजाने हमारे पास हैं, और इन खजानों को जमा करने का आधार भी बताया। तो सभी अपने को देखते हुए बहुत अच्छा चिंतन भी करेंगे और अपना चित्र भी बनाएंगे। सबसे पहले हम चले, याद होगा जिन्होंने मुरली सुनी है या वहाँ अपने वहाँ टीवी आदि पर देखी हो सब चीजें, बाबा ने कहा स्वयं श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा चित्रकार बनकर अपना चित्र बनाओ, जिस चित्र में तिलक, ताज और तख्त हो। तिलक श्रेष्ठ स्मृतियों का, श्रेष्ठ स्मृतियां हैं हमारे श्रेष्ठ स्वमान, कौन हैं हम। बाबा ने याद दिलाया तुम विशेष आत्माएं कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हुए सभी धर्मों की आत्माओं के पूर्वज हो, पालन करने वाले हो, इस स्वमान में आ जाएं। ये स्मृति का तिलक है, तुम्हारे सिर पर डबल ताज है। संसार में और राजाओं को इसका ज्ञान ही नहीं, डबल ताज। और तख्त कौन सा दिया है बाबा ने, बाबा के दिल पर विराजमान हो, बाबा के दिल तख्त नसीन हो। तो चित्र बनाए हम बहुत अच्छा, विचार करें, इस चीज को स्वीकार करेंगे सभी, भगवान मुझे बहुत प्यार करता है। करता है या नहीं, सचमुच बहुत प्यार करता है, इसलिए उसने कहा तुम मेरे दिल में हो। देखो भगत कहते हैं भगवान हमारे दिल में बैठा है, और भगवान कहता है तुम मेरे दिल में हो। इसका सहज अर्थ ये है जो हमें नशा हो जाना चाहिए, भगवान मुझे बहुत प्यार करता है और मुझे इतना योग्य बना देना चाहता है कि चारों युगों में हम भरपूर रहें, किसी के आगे भी हाथ फैलाना न पड़े, न स्थूल धन के लिए न सुख शांति के लिए, ऐसा देखना चाहता है वो। बाबा के बहुत अच्छे शब्द थे, मेरे बच्चे और दुखी, आपके बच्चे भी यदि दुखी हो तो माँ बाप को कैसा लगेगा कि सब कुछ करके भी इनका दुख हर लें। भगवान को ये पसंद नहीं कि मेरे बच्चे और साधारण रह जाएं, मेरे बच्चे और शांति की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। वो चाहता है मेरे बच्चे दाता बन जाएं, इतने संपन्न हो जाएं, इतने भरपूर हो जाएं कि सारे संसार को देने वाले हों, तब तो उसको भी गर्व होगा ना। जैसा बाबा ने कहा, कितनी सुंदर भाषा है बाबा की, कितना सुंदर उसकी फीलिंग्स हैं, ये केवल हम सब जान सकते हैं। बाबा ने कहा बाप को तो गर्व है, पता है कि मेरा हर बच्चा राजा बेटा है। भगवान जिनसे गर्व करता हो वो कैसे होंगे। हमें भी अपने को इतना योग्य बना देना है कि भगवान भी हम पर गर्व करे और सारा संसार भी हम पर गर्व करे, ठीक है। सारे संसार के पालन करने वाले हम बन जाएं। एक स्वमान से हम शुरू करेंगे, और आप सभी जब तक यहाँ शांति वन में सेवा में हैं, इस स्वमान को बहुत पक्का कर दें। बाबा ने कहा तुम बाबा के गले की माला के ऐसे मन के हो इनकी याद से अनेक भक्तों की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। समझें हम सभी अपने महत्व को, अपने इस गौरव को, अपनी शक्तियों को हमें याद करके अनेक भक्त दुखों से मुक्त हो रहे हैं, हमें याद करके अनेक भक्तों को शांति मिल रही है। हम कैसे होंगे तो ये नशा रखेंगे सभी इस बार यहाँ रहते हुए, मैं बाबा के गले की माला का ऐसा मोती हूँ जिसकी याद से भक्तों के भी बिगड़े काम संवर जाते हैं। तो हमारे पास समस्याएं कहाँ रह सकती हैं? हम केवल अपने स्वमान में रहें, समस्याएं हमसे दूर भाग जाएंगी। पसंद है ना? मैं भी बाहर जाता हूँ तो बहनें जहाँ उस शहर में कोई बड़ा मंदिर होता है तो ले जाती हैं। तो मैं हमेशा एक चीज देखकर बहुत सुखद फीलिंग करता हूँ, लेकिन देखो काम किसने किया? हम सब ने काम किया ना, भगवान को साथ दिया, अपना जीवन पवित्र बनाया, हमारी पूजा होने लगी, काम हम सब ने किया। और क्या, कितने हजारों पंडितों का ब्राह्मणों की आजीविका चल रही है, कितना धनमाल मिल रहा है उन्हें, तो जिन्होंने काम किया वो कितने संपन्न होंगे, सोचने की बात है। हम सभी अपने महान स्वमान को पहचानते हुए इसकी स्मृति में रहा करें तो हमारा वही स्वरूप बन जाएगा और स्वतः ही विघ्न और समस्याएं हमें छोड़ चले जाएंगे। बल्कि हमें तो इतना शक्तिशाली बनना है, आप सबको भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ, बाबा की ये बात आने वाले समय में तुम्हें सारे संसार के विघ्नों को हरना होगा। विनाश काल छोटा मोटा काल नहीं होगा, बहुत भयानक काल होगा जिसमें ये संसार हर मनुष्य विघ्नों से बुरी तरह से त्रस्त हो जाएगा, गिर जाएगा। हमें संसार के विघ्नों को हरना होगा, तभी तो हम विघ्न विनाशक कहलाएंगे, अपने को तैयार करेंगे इन दोनों स्मृतियों के द्वारा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और विघ्न विनाशक हूँ। हम अभी से अपने और दूसरे के विघ्नों को हरने के अनुभव करें, अभी से शुरू करें, ताकि हमें अपने में भी विश्वास हो जाए कि हम दृष्टि देकर, हम संकल्प करके, हम प्रकाश देकर दूसरों को विघ्नों से मुक्त कर सकते हैं। करेंगे अपने को सभी तैयार? बहुत बड़ा काम हम सबके सामने आ रहा है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि हम केवल अपने लिए जिए या हम अपने को तैयार करें कि हम संसार के लिए जिएंगे, हम संसार के काम आ जाएं, भगवान के काम आ जाएं और उसके संसार के काम आ जाएं, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ठीक है ना बात? अपने को प्रिपेयर करें, सभी तैयार करें कि हम अपनी शक्तियों को इतना बढ़ाएं, अपने स्वमान को इतना ऊंचा उठाएं, अपनी भावनाओं को इतना शुद्ध करें कि हमसे निकली हुई किरणें, हमसे फैलती हुई प्रकाश आत्माओं को बहुत कुछ दे सके। तो बैंक खोला है भगवान ने, सभी ने अकाउंट खाते खोले हैं, किसने खोले हैं खाते उस बैंक में? अच्छा, सोच रहे हैं कोई कोई, माताओं ने सभी ने खोला नहीं? या भाइयों का काम है खाता खोलना? केवल भाई खोलते हैं ना घरों में भी, माताएं भारत में कम खोलते, सब खोल दो खाते, तीन खाते खोलने हैं, अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ का खाता पहला खाता, दूसरा खाता दुआओं का खाता, तीसरा खाता पुण्य कर्मों का खाता। इन तीन खातों में हमें खजाने जमा करने हैं। मैं आपको गिना दूंगा, 9 खजाने हमें जमा करने हैं भारतवर्ष में। 8 सिद्धियां 9 निधियां, इनका गायन है। 8 सिद्धि सबसे बड़ी, 9 खजाने निधियां। हम बाबा से सिद्धियां भी प्राप्त कर रहे हैं, केवल प्राप्त ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सिद्धि दाता बन जाते हैं, सिद्धि देने वाले और खजाने जमा कर रहे हैं। तो अपने पुरुषार्थ का खाता खोलेंगे, सबने खोल तो दिया है, हर तरह का पुरुषार्थ, ज्ञान का, योग का और धारणाओं का, तीनों जो हमारे सब्जेक्ट हैं, इनमें हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हुए जमा करेंगे। 9 खजाने जब हम गिनेंगे, उसमें से आप चुन सकते हैं कौन सा खजाना किस खाते में जमा होगा। जो भी बाबा की श्रीमत है, मुरली सुनने से लेकर सवेरे उठकर अच्छा योग करना और सारा दिन हमें क्या क्या पुरुषार्थ करना है जीवन में, उसको करते हुए हम अपने खजानों को बढ़ाएंगे। हम सब जानते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज हमें अपनी बुद्धि में समा देनी चाहिए कि यदि हमें कुछ पाना है तो साधनाएं करनी ही पड़ेंगी, या बिना साधनाओं के मिल जाएगा, बिना तपस्या किए हम खाली रह जाएंगे। आज आप देख लो आपके घरों में आपके बच्चे किसी कोर्स को करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, पहले तो ग्रेजुएशन या एमए एमएससी करेंगे, उसके बाद और कई डिग्री करेंगे, कोई बीटेक एमटेक, उसके बाद डिग्रियां करेंगे, पिछले साल पढ़ाई में मेहनत करते हैं। जो बच्चे होशियार हैं, जो अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, आप सब देख रहे होंगे अपने घरों में, वो टीवी देखना भी छोड़ देते हैं, घूमना फिरना भी छोड़ देते हैं, केवल तैयारी। अब तो कुछ मिलता है ना, जो बच्चे ऐसा नहीं करते उनका भविष्य साधारण रह जाता है, उनको छोटी छोटी नौकरियां करनी पड़ती है। हम सब भी अपने चित्त में ये बात अच्छी तरह समा लें कि अगर हमें संगम युग पर संतुष्ट होना है तो तपस्या करनी ही पड़ेगी। सही आत्माएं केवल समस्याओं की चर्चाओं में रहते हैं, हमारे जीवन में ये समस्या है, ये है, ये है। जैसे एक बहुत अच्छी कहावत है कि अंधेरे को कोसने से तुम्हें क्या मिलेगा, दीपक जलाओ। ठीक है ना, बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, ठोकर लग रही है, कुछ नहीं दिखता है, ये कहने से कुछ होगा? भाई लाइट जलाओ। समस्याएं हैं, ये गायन करने से तो कुछ मिलेगा नहीं। तपस्या करें, तपस्या के सामने समस्याएं ठहरती नहीं हैं। बहुत अच्छा महावाक्य था पीछे, जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। कितनी अच्छी बात है, सभी भाई बहने इन सूक्ष्म रहस्यों को समझ लें। दूसरा रहस्य जो बाबा ने बता दिया है, तुम्हारी स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। 4-5 शब्दों में सारे संसार का, चारों युगों का सर्वश्रेष्ठ रहस्य समा गया, जैसी स्थिति वैसी परिस्थिति। 4 शब्द हैं केवल, चारों युगों का रहस्य आ गया। अगर हम परिस्थितियों को समाप्त करना चाहते हैं तो श्रेष्ठ स्थिति के बल से, तो पुरुषार्थ के द्वारा हम अपना खाता जमा करें। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, सभी अपने को तैयार करें। सिंपल शब्द अपने पास रख लें, कुछ पाना है भगवान से तो कुछ करना है, सिंपल सी बात है। और अपने को दृढ़ कर दें कि हमें करना है, हम नहीं करेंगे, तो क्या वो भक्त करेंगे जिन्हें कुछ भी पता नहीं है? हमारे पास संपूर्ण ज्ञान स्पष्ट है, विधि का ज्ञान है, सरल विधि, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ जाने से अच्छा मिलेगा या वहाँ जाने से, इस तीर्थ पर कुछ मिलेगा या उस तीर्थ पर, ये सब नहीं है। भगवान सामने है, मदद कर रहा है, उसने कह दिया है तुम एक कदम बढ़ाओ तो मैं हजार कदम बढ़ाऊंगा, अर्थात तुम जरा सी हिम्मत करो मेरी ओर से हजार गुना मदद आ जाएगी। इतना सब होते भी हमें न करें तो यह बहुत बड़ी कमजोरी हो जाएगी, हमें करना है। दूसरा खाता हमारा है दुआओं का खाता। बाबा ने तो एक ही बात कही, संतुष्ट करना, संतुष्ट करना, ये भी कहा संतुष्ट रहना, पर जो संतुष्ट रहेंगे वही संतुष्ट करेंगे, जो स्वयं संतुष्ट नहीं है वो दूसरों को संतुष्ट नहीं कर सकते। घरों में भी ये स्थिति है, दुआएं हमें मिलेंगी दूसरों को सुख देने से, दुआएं हमें मिलेंगी असहायों को सहायता करने से, ऐसे मिलेंगे ना, दुआएं हमें मिलेंगी जिनका कोई नहीं है उनके हम हो जाएं, बहुत दुआएं मिलेंगी, और ये दुआएं हमारे मार्ग को सरल करती हैं। क्यों जरूरी हैं दुआएं, ध्यान दें, पिछले साल से बाबा दुआओं पर विशेष रूप से जोर दे रहे हैं, पहले भी कहा है लेकिन पिछले साल से बहुत ध्यान दिलवाया दुआएं दो। क्यों? जिस मनुष्य के साथ दूसरों की बहुत दुआएं हैं, अगर उसके जीवन में भयानक बीमारी आ जाए तो सहज निकल जाती हैं। जिसके पास दुआओं का खाता जमा है उसके जीवन में यदि समस्याओं के पहाड़ भी गिर जाए तो उन्हें चोट नहीं लगती, सहज समाप्त हो जाते हैं। जिनके पास दुआएं नहीं है वो ऐसे ही गिर जाएंगे ना, यही सीढ़ी से हड्डियां टूट जाएगी, कहेंगे फिर दोनों पैरों में कई कई फ्रैक्चर हो गए, क्या हुआ, सीढ़ी से स्लिप हो गए थे बस। और कुछ लोग ऐसे एरोप्लेन से भी गिर गए, जिंदे रह गए, सुनी होगी आपने कहानियां। पुण्यों दुआओं का प्रभाव बहुत बड़ी शक्ति है दुआओं में, इसलिए पर दुआएं तो हमें देनी नहीं है, पर दुआएं बहुत देनी है। अगर कोई बद्दुआएं देंगे दूसरों को, क्या है बद्दुआएं, दूसरे के बारे में बुरा सोचना, उनसे बदला लेने की भावना रखना, किसी को कष्ट पहुंचा देना, तो दुआओं का खाता खत्म होता जाएगा। तो माया को जीतने में, इस जीवन में सफलता पाने में दुआएं बहुत मदद करती हैं, इसलिए सभी को ये खाता खोलकर संतुष्ट करते हुए खजाने जमा करते चलना है। हमारे खजाने सूक्ष्म हैं। बाबा बहुत अच्छी बात कहते आए, तुमने यहाँ बहुत दुआएं दी हैं, इसका प्रूफ है भक्ति मार्ग में क्या हो रहा है, बोलो देवियां बोलेंगे, क्या कर रही हैं आपकी पत्थर की मूर्तियां, भक्तों को दुआएं दे रही हैं। देखिए सारा संसार चला चार युग बीते, पहले दो युग तो दुआओं की आवश्यकता नहीं, भक्ति द्वापर युग से पत्थर की मूर्तियों से दुआएं मिलने लगी। हम जानते हैं यदि भक्ति न होती तो संसार वीरान बन जाता, जंगल बन जाता पूरा। भक्ति ने बहुत कुछ सिखाया मनुष्य को, पाप कर्मों से बचाया, अशांत व्यक्ति को शांति दी, सुख दिया, तो देखो दुआएं मिलती रही। हमारा वर्तमान दुआओं देने का प्रभाव दो युग तक संसार को दुआएं दिलाने वाला बन गया, तो बड़े महत्व की बात है। हम मन से भी दुआएं दें, मुख से भी दें, कर्मों के द्वारा संतुष्ट भी करें, दुआएं मिलती रहेंगी। हमें देके चलना है और लेने के लिए श्रेष्ठ कर्म करने हैं, संतुष्ट करना है सबको। तीसरा खाता पुण्य कर्मों का खोल देना है। सबने खोल दिया है, सबसे बड़ा पुण्य याद करें, सबसे बड़ा पुण्य पवित्र बनना और बनाना। यदि आप एक मनुष्य को भी पवित्र बनाते हैं तो पुण्यों का खाता सर्वश्रेष्ठ। भक्ति में जिस चीज का किसी को ज्ञान नहीं है, शास्त्रों में जिसकी चर्चाएं नहीं है, पवित्र बनाना। बाबा ने हम सबको पुण्य का बहुत बड़ा मार्ग दिखा दिया है। सेवाओं के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में, रस्त में रहते हुए भी कर्म निस्वार्थ भाव से करना, सेवाएं निष्काम भाव से करना, बेहद की वृत्ति से करना, अच्छी भावनाओं से करना। भाव भावनाएं, बाबा ने सब बोला, बेहद की वृत्ति और निस्वार्थ स्थिति, इससे पुण्य बहुत जमा हो जाते हैं। हमने यज्ञ में सेवा भी की हो, उदाहरण ले ले, किसी ने तन की सेवा की हो या धन की सेवा की हो, लेकिन सेवा करने के साथ कोई कामना रही हो, मेरा नाम हो जाए, लोग मुझे सब जान जाएं, इस स्वार्थ से पुण्य नष्ट हो जाता है। बेहद की वृत्ति नहीं रखी सेवाओं में, ये मेरा है, मेरेपन की वृत्ति से किया तो भी पुण्य नष्ट हो जाता है। ग्रस्त में रहने वाले बहुत अच्छा ध्यान दें, ग्रस्त में रहने वालों को तो परिवार के प्रति मेरापन रहता ही है, बड़ा नेचुरल है, रहता या नहीं, रहता ही है। इससे जरा ऊपर उठेंगे कि ये मेरा परिवार केवल इतना नहीं, सारा संसार भी मेरा परिवार है। केवल ये भावना अपने में पैदा करो। सभी माताएं बहुत ध्यान दें, गृहस्थ में, परिवार में जो कर्म आप करती हैं वो परमात्म अर्थ करने लगो, यज्ञ अर्थ करने लगो, समर्पण भाव से करने लगो। आपका घर में किया गया काम पुण्यों का खाता जमा कराएगा। समझ रही हैं बहने? घर आपका है, परिवार आपका है, लेकिन आप ये भावना बढ़ा दो, ये परिवार बाबा का है, ये घर बाबा का यज्ञ है और हम उसके यज्ञ में सेवा कर रहे हैं। देखो, आपके कर्म आपको बंधन में डालने वाले नहीं होंगे, अन्यथा कर्म मनुष्य को बंधन में डाल रहा है। भाई लोग भी ध्यान दें, आप अपने परिवार के लिए कमा रहे हैं, वो तो कमाना है, परंतु यदि आपको केवल ये फीलिंग रहती है ये मेरे परिवार के लिए है, तो आपके ये कर्म आपको बंधन में डालने वाले होंगे, खींचेंगे ये आपको, कर्म बंधन बढ़ता जाएगा। लेकिन यदि आप ये भावना बिल्कुल स्ट्रांगली अपने अंदर समा लें, ये परिवार बाबा का यज्ञ है, हम सब कर्म बाबा के लिए कर रहे हैं, समा भी रहे हैं, किसके लिए? बाबा के लिए। बहुत सुंदर संकल्प है ये, हमारा हर कर्म तुम्हारे लिए। संकल्प करें, समर्पण भाव इसे कहते हैं, हमारी हर चीज तुम्हारे लिए, हम भी तुम्हारे लिए, हमारे कर्म भी तुम्हारे लिए, हमारी धन संपत्ति भी तुम्हारे लिए। कह सकते हैं या नहीं? भक्ति में तो गाते आए ना, क्या गाती थी माताएं? तन मन धन सब तेरा, पर घर में आके वापस तन मन धन सब मेरा, बदलते रहते थे रोज। अब ये संकल्प कर लें, सब कुछ तेरे लिए, जैसे हम ये कहते ना, मैं बाबा का, बाबा मेरा, बाबा ने मुरली में कहा, इसमें जोड़ दें, मेरा हर कर्म तुम्हारे लिए, मेरा जीवन तुम्हारे लिए। एक ही बार तो ऐसा समय मिलता है जहाँ हम ये भावना, ये प्यार परमात्म अर्थ अर्पण कर सकते हैं, मेरा सब कुछ तेरे लिए। चुड़ियान करके देखो बाबा से रोज, बहुत आनंद आएगा, आपको फील होने लगेगा मेरी समस्याएं भी तेरी, मेरे दुख दर्द, मेरे शरीर के कष्ट तेरे, तुरंत हल होने लगेंगे। ये अच्छे अनुभव सभी को करने हैं। तो पुण्य कर्म सभी जानते हैं, सुख देना पुण्य कर्म है। पुण्य कर्म का तुरंत परिणाम आता है, एक व्यक्ति प्यासा हो हम उसे पानी का गिलास दे दें, हमें सुख मिलता है। देने वाले को तो सुख मिलेगा ही, देने वाले को बहुत सुख मिलेगा, अनुभव होगा सभी को। इसलिए धर्मों में, भक्ति में दान का बड़ा महत्व रख दिया गया हर व्यक्ति के लिए। हिंदू धर्म में तो नियम ही था, अपनी संपत्ति का, अपनी कमाई का 10% धर्म के कार्यों में लगाओ, क्योंकि उससे सच्चा सुख मिल रहा था, धर्म भी जीवित रहा, धर्म की पालना करने में धन संपत्ति की मदद रही, और देने वालों को धर्म का बल मिलता रहा। लोग सोचते हैं ये सब क्यों कर दिया धर्मों में, लेकिन इसकी बहुत आवश्यकता थी द्वापर युग से भी। हम सब कुछ परमात्म अर्थ करने लगे, पुण्यों का खाता सभी बढ़ाएंगे, पुण्य भी मनुष्य को समय पर काम आते हैं। मैं तो ऐसा सोचता हूँ, देखता हूँ प्रैक्टिकल लोगों के अनुभव से, पुण्य मनुष्य के सच्चे मित्र हैं। धन साथ छोड़ जाएगा, संबंधी भी साथ छोड़ जाते हैं, हमारा अपना शरीर भी साथ नहीं देता, पर पुण्य कर्म किसी के कभी साथ नहीं छोड़ते। सभी इस खाते को बढ़ाएंगे, याद रखेंगे, इन खजानों को बढ़ाने का आधार निमित्त भाव और निर्माण चित्त स्थिति, निरंकारी का निमित्त भाव। हमें बहुत अच्छी तरह एक चीज समझ लेनी है, सभी इसको अनुभव में लाएंगे अपने जीवन में, हमारे साथ परमात्म शक्तियां काम कर रही हैं, हमारी अपनी शक्तियां काम नहीं कर रही। मैं अगर यहाँ बोल रहा हूँ, मैं आपको क्लास करा रहा हूँ, तो मेरे साथ परमात्म शक्तियां काम कर रही हैं, तब तो हम बोल पा रहे हैं, नहीं तो नहीं हो सकता। पांडवों की गाथाओं में ये बहुत अच्छा चित्रण है, पांडवों को अंत में बहुत अच्छी तरह आभास हो गया कि तुम्हारे साथ परमात्म शक्तियां काम कर रही थी, इसलिए तुम बहादुर थे। श्री कृष्ण के चले जाने के बाद उन्हें लगा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। हम में से भी कोई यदि सोचे हम यहाँ इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बाहर जाके भी तो कर सकते हैं, बाबा को छोड़ के भी तो कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ परमात्म शक्तियाँ हमसे जुड़ चुकी हैं। इसका फायदा उठाएंगे, इसको कहेंगे निमित्त भाव। मैं ही कर रही हूँ, मैंने ये काम किया, छोटा सा संकल्प भाई बहने अपने जीवन से हटाएं। माताओं को संकल्प रह सकता है, मैं घर की मालिक हूँ, मैं घर की बड़ी हूँ, मैं नेचुरल संकल्प है, कोई खराब बात नहीं है, मालिक तो आप ही हैं और आप ही रहेंगे, लेकिन अब बाबा को मालिक बना दो, मैं निमित्त हूँ। भाई लोगों को ये संकल्प रहना नेचुरल है, मैं कमाता हूँ। किसी किसी को ये संकल्प भी रह सकता है, मैं न कमाऊं तो इनका क्या हाल होगा, और ये फीलिंग रहती है अपने बच्चों के लिए, मैंने कमा कर तुम्हें पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, ये किया, ये फीलिंग आत्मा को कष्ट देती है। जब बुजुर्ग हो जाते हैं, बच्चे माँ बाप से ध्यान नहीं देते, तो माँ बाप ये सोच सोच कर दुखी रहते हैं, हमने इन बच्चों के लिए इतना किया, इन बच्चों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये सोचने की आवश्यकता नहीं, आपने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, ये कहता हूँ मैं या नहीं, क्या किया, केवल फर्ज निभाया है। जो आत्माएं आपके घर में जन्म लिया है, वो अपना भाग्य लेकर आई हैं। न जाने किस आत्मा ने जिस अच्छी आत्मा ने आपके घर में जन्म ले लिया हो उसकी उपस्थिति से आप धन धान से संपन्न हो गए हों। कभी कभी न जाने कौन बुरी आत्मा घर में जन्म ले लेती है, उसके जन्म लेते ही सब काम बिगड़ जाते हैं। हम कौन हैं करने वाले, हम निमित्त हैं केवल। इसलिए निमित्त और निर्माण चित्त निरहंकारी, हम सबको अच्छी तरह ध्यान देना है। ध्यान योग के मार्ग पर चलते हुए यदि किसी ने मैं और मेरेपन को सूक्ष्म रूप से पहचान कर न छोड़ा तो उसका ज्ञान योग बहुत सार्थक नहीं माना जाता। हमारी इस रूहानियत का, अध्यात्म का, हमारी तपस्याओं का महत्वपूर्ण सार है ही मैंपन का त्याग, मेरेपन का त्याग। मैं को स्वमान में बदल दें, मेरे को तेरे में बदल दें। सूक्ष्म चीज है, कहने से काम नहीं होता, बहुत सूक्ष्म फीलिंग हो जाए हमें सब कुछ तेरा। अब हमारे पास 9 खजाने हैं, गिन लें सभी। पहला खजाना बोलो, सबसे पहला ज्ञान का खजाना, दूसरा गुणों का खजाना बोलो, तीसरा शक्तियों का खजाना, चौथा सोचो खुशियों का खजाना, पांचवा संकल्पों का खजाना बहुत बड़ा, छठा समय का खजाना, सातवा दुआओं का खजाना, आठवा पवित्रता का खजाना जिसमें सुख शांति दोनों आती हैं, और नौवा हो गया पुण्य कर्मों का, श्रेष्ठ कर्मों का खजाना। अब सभी ने जो खाते खोले हैं उसमें ये सब खजाने जमा करने हैं। मैं आप सभी को एक बहुत सुंदर संकल्प देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने हम सभी को एक संकल्प दिया है, इन खजानों का प्रभाव पूरे 84 जन्मों पर रहेगा। पहले 2 युग यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध हमें मिलेगी, बाद के 2 युग यही संस्कार जो हमने यहाँ बना लिए हैं प्रैक्टिकल में चलते रहेंगे। सत्युग त्रेता में इन संस्कारों की जरूरत नहीं होगी। जिसने इस समय अपने को संतुष्ट कर लिया, पिछले 2 युग भी वो हर जन्म में संतुष्ट रहेंगे। किसने अपने जीवन को यहाँ ईश्वरीय सुखों से भर दिया, पिछले 2 युग भक्ति काल में वो आत्माएं सुखी महसूस करेंगी, दुख आते भी दुखों से पीड़ित नहीं होंगी। तो भाग्य बनाने का सुंदर समय चल रहा है। एक सुंदर सा लक्ष्य सभी ले लें, ये समय भाग्य बनाने का है। भाग्य हमारे हाथ में है, अब हम भाग्य के हाथ में नहीं है, बाकी 4 युग हम भाग्य के हाथ में रहेंगे। संगम युग पर भाग्य की कलम हमारे हाथ में है, ये बहुत सुंदर रहस्य हो गया। ये संसार में किसी भी विद्वान और आचार्य की समझ में नहीं आया था, भाग्य पुरुषार्थ प्रारब्ध कौन किसके वश है, कौन बड़ा कौन छोटा, ये अब स्पष्ट कर दिया बाबा ने। अब भाग्य तुम्हारे हाथ में, पूरे 4 युग तुम भाग्य के हाथ में। अब भाग्य बनाने का समय, बीज डालने का समय है। सभी संकल्प करें, हम परमात्म मिलन के इन दिनों को कैसे व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु मिलन का आनंद लेने का समय है, इन दिनों को हम कैसे बिता रहे हैं, उलझनों में, समस्याओं में, टकराव में, या परम आनंद में। सभी अपने से बातें करें, अब ये सब कुछ हमारे हाथ में है। कुछ चीजें छोड़कर हम अपने जीवन को सुखों का भंडार बना सकते हैं। अगर आप अच्छी तरह अपने को देख लें, मेरे पास बहुत भाई बहने आते हैं, दिखाई देता है संगम युग पर जिस आत्मा ने अपने चित्त को शांत कर लिया वो सबसे अधिक बुद्धिमान, और जिनका चित्त उखड़ता रहा, चिड़चिड़ापन रहा, दूसरों को देखने में रहा, ये ऐसा कर रहे, इन्होंने मेरे से ऐसा किया, इन्होंने मुझसे ऐसा किया, इन्होंने मुझे बहुत दुख दिया, इन्होंने मुझे बहुत तंग किया है, वो सब इस संगम युग के काल को भी दुखों में व्यतीत कर रहे हैं। बाहर निकल जाएं सभी इनसे, जिसने भी हमारे साथ जो कुछ भी किया हो अब उन्हें क्षमा दे दो, क्षमा दान दो उन्हें। अब परमात्म छत्र छाया में आने का समय है, पसंद है सभी को? पास्ट में नहीं जीना है। तो मैं जो एक आपको अच्छा संकल्प दे रहा था वो ये है, ध्यान से सुनेंगे सभी, रोज सवेरे उठकर या कभी भी, क्योंकि जब हम सवेरे उठने की बात कहते हैं तो कई तो साथ साथ रिजेक्ट कर देते हैं, अपना तो सवेरे उठते नहीं भाई, छोड़ दो इस चीज को। आप जब भी उठें तभी, न उठें तो 6 बजे, और देर से उठें तो 8 बजे, न उठें तो रात को तो जगेंगे, एक चिंतन करेंगे, मैं अपने सभी जन्मों को कैसा देखना चाहता हूँ, कैसा देखना चाहती हूँ। सभी माताएं अच्छी तरह चिंतन करें, हमारा हर जन्म ऐसा हो, कैसा सोचो, अनेक जन्म अनेक बार हमारे सिर पर ताज रख दिया जाए, कितना अच्छा होगा, होगा चाहते हैं सभी? या ताज बहुत भारी है, कौन परेशान होगा ताजवाज से, अपना सीधा साधा जीवन ही सहज है, अच्छा है। हमारा हर जन्म तन मन धन के सुखों से संपन्न हो, हमारे पास हर जन्म सुंदर श्रेष्ठ सद्बुद्धि हो, चाहते हैं सभी? हर जन्म में हम दाता बन कर रहे हैं, हाथ फैलाने वाले न हो, सोचो चाहेंगे आप सभी ये? हमारे हर जन्म में कोई भी हमारे द्वार पर आ जाए खाली न जाए, हम सुखों का दान करने वाले हों, हम हर जन्म में धर्म को बल देने वाले हों, हम हर जन्म में, हमारा जीवन हर जन्म में चरित्र से संपन्न हो, श्रेष्ठ चरित्र के द्वारा हम दूसरों को प्रेरणा देने वाले हों, करेंगे ऐसा विचार? हर जन्म में हमें जो परिवार मिले उसमें क्या हो, संबंधों में अति प्यार हो। आज भी हम देखते हैं ना, संबंधों में प्यार नहीं तो जीवन बिल्कुल बेकार लगता है, क्या करेंगे इसके लिए? अब ये 9 खजाने हैं हमारे पास, एक एक का चिंतन करें। ज्ञान, ज्ञान का खजाना, ज्ञान दान से, ज्ञान चिंतन से, ज्ञान सुनने से, ज्ञान के अध्ययन से बढ़ता है, ठीक है? मुरली सुनेंगे, स्टडी करेंगे, ज्ञान दान करेंगे, ज्ञान का चिंतन करेंगे, ये खजाना बढ़ेगा। और जिसका ये खजाना बढ़ गया, ज्ञान से हमें प्राप्त होता है विवेक बुद्धि, उसे हर जन्म सुंदर बुद्धि प्राप्त होगी। जिसने ज्ञान धन बहुत दान किया है उसे स्थूल धन की कोई कमी नहीं रहेगी। लोग आपसे राय लेने आया करेंगे द्वापर युग के बाद भी, अगर आपने बहुत ज्ञान धन का दान किया है, कहेंगे बहुत अच्छा, एक महावाक्य सार गर्भित, जिसके पास ज्ञान धन बहुत है उसे स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगती। नोट करें सभी भाई लोग, जिसके पास ज्ञान धन बहुत है स्थूल धन सहज प्राप्त होता है। बढ़ाएंगे इस धन को, ज्ञान से जीवन में चमक आती है, ज्ञान से हमारी खोज समाप्त हो गई है, हमारी भटकन समाप्त हो गई है, हम कुछ ढूंढ नहीं रहे हैं, ऐसा शेष ज्ञान हमारे चिंतन में आ जाए, हम उस चिंतन का सुख लेने लगे तो ज्ञान शक्ति बन जाता है। यदि हमें संबंधों में बहुत प्यार चाहिए जन्म जन्म, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ परमात्म प्यार में मगन रहेंगे। जिसने भगवान से बहुत प्यार किया उसे जन्म जन्म प्यार मिलेगा, जिसने उसकी रचना से प्यार किया, सभी आत्माओं से प्यार किया, उसे जन्म जन्म संबंधों में प्यार प्राप्त होगा। गुणों का खजाना बढ़ाएंगे, गुणवान रहेंगे हर जन्म, शक्तियों का खजाना बढ़ाएंगे, ताज मिलेगा। शक्ति, शक्ति माना पावर, सत्ता हाथ में आ जाएगी, और जिनके पास शक्तियाँ ज्यादा होंगी वो हर जन्म में निर्भय भी रहेंगे, दूसरों को बल देने वाले होंगे। सभी को शक्तियाँ बढ़ानी है, कैसे बढ़ेंगी शक्तियाँ, कैसे बढ़ेंगी, सर्व शक्तिवान से बुद्धि योग लगाने से, विशेष रूप से जब हम योग अभ्यास करें, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ और बाबा है सर्व शक्तिवान, उसकी शक्तियाँ देना, इस अभ्यास से हमारी शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी। पवित्रता से शक्ति बढ़ेगी, ज्ञान चिंतन से शक्ति बढ़ेगी, शक्तिशाली संकल्प करने से शक्ति बढ़ेगी। इनको हम आधार बनाएंगे अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के। पुण्य कर्मों का खाता जमा करेंगे बहुत, द्वापर युग के बाद भी हम पुण्य करते रहेंगे, कृष्ण संस्कार हमारे अंदर पड़ जाएगा। हम अपने बोल को यदि यहाँ सुंदर बनाएंगे तो द्वापर युग से भी अच्छी भाषा बोलेंगे, हमारी भाषा का प्रभाव रहेगा, हमारी भाषा दूसरों के लिए प्रेरक बनी रहेगी। सभी समझ ले, हमें द्वापर युग के बाद भी बड़े बड़े काम करने हैं, द्वापर युग से भी हम संसार के काम आएंगे, संसार को ज्ञान भी चाहिएगा, बहुत कुछ सिखाना पड़ता है मनुष्य को। सिखाने वाली आत्माएं वही होंगी जिन्होंने यहाँ बाबा से बहुत कुछ सीख लिया है। तो सभी खजाने जमा करेंगे ना, समय का खजाना, इसको जमा करने का अर्थ है समय को सफल करना, जिसके लिए बाबा ने कहा तुम्हारा एक मिनट एक वर्ष के बराबर है। समय को सफल करना माना समय का खजाना जमा करना, तो अनुभव होता रहेगा कि ठीक समय पर सफलता प्राप्त होगी, किसी भी जन्म में समय धोखा नहीं देगा। बहुत सुंदर बात रहेगी ये, बहुतों को अनुभव रहता है जीवन में कि भाई समय ने धोखा दे दिया, सब कुछ तो ठीक ठीक था, समय पर आकर सब खेल बिगड़ गया। जिन्होंने समय को सफल किया, समय उनके जीवन को सफल करेगा, सफलता उनके पास रहेगी। ऐसे ही खुशियों से हम अपने खजाने भरते चलें। कैसे मिलेगी खुशी, कैसे मिलेगी खुशी, रहती हैं माताएं सभी खुश या नहीं, सभी खुश नहीं रहते हैं, चेहरे बता रहे हैं सभी खुश नहीं रहते हैं, दूसरों का व्यवहार, अपने ही विचार, अपना ही अनुमान खुशी को छीनता रहता है। हमारी ये अलौकिक खुशी है, ये वो खुशी नहीं है जो टीवी देखने से मिल जाती है, लोग सोचते हैं टीवी देखने से बड़ी खुशी मिलती है, वो खुशी तो कुछ भी नहीं है, अलौकिक खुशी जो हमारे अपने अनुभव और चिंतन से प्राप्त हो, जो श्रेष्ठ कर्मों से प्राप्त हो, जो बाबा से योग युक्त होने से प्राप्त हो, ऐसी खुशी। तो एक संकल्प कर लें सभी, एक छोटा सा संकल्प है, आप जब तक यहाँ शांति वन में सेवा में हैं, 10-15 दिन तो रहेंगे सभी, 10 दिन तो कम से कम, एक संकल्प लेकर उसकी प्रैक्टिस करें। हमें वो नहीं सोचना है जो हमारी खुशी को छीन ले जाए। इतना ध्यान दें, खुशी को छीनने वाले बहुत संकल्प होते हैं। बहन जी ने दूसरी माता को पूछ लिया, मुझे तो पूछा ही नहीं, सारा दिन खुशी गायब। छोटी बातें, खाने पे दूसरों की थालियां देखते रहते हैं, इसकी थाली में ज्यादा माल है, हमारी में तो है ही नहीं, ब्रह्मा भोजन भूल गए, खुशी गायब। दूसरों को सोने के लिए अच्छा कमरा मिल गया, हमें जंगल में सुला दिया, खुशी गायब। छोटी बातें, अपने को इतना महान बनाए कि ये छोटी बातों के विचार हमारी खुशी को नष्ट न करें। खुश रहना है, सोने को तो मिल गया ना, हो सकता अच्छे कमरों में सोने वालों को नींद ही ना आ रही हो और आप खड़ाके ले रहे हो सारी रात, हो सकता है ना। इसलिए ऐसा कोई भी संकल्प आने नहीं देना है जो खुशी को हर ले जाए। खुशी पर हमारा अपना अधिकार रहे तो चारों युग खुश रहेंगे हम, जो भगवान को पाकर ही खुश न हुआ हो वो किसे पाकर खुश होगा। जो अथाह खजाने संपूर्ण ज्ञान परमात्म प्यार को पाकर ही खुश न हुआ हो वो भला कैसे खुश रहेगा। इसलिए जो कुछ हो रहा है उसमें संतुष्ट रहते हुए खुशी पर अपना अधिकार रख लें सभी। इस खजाने को सभी को बढ़ाते चलना है। ऐसे ही जिन भी खजानों की चर्चा की है सभी उन पर ध्यान दें। पुण्य कर्म, पवित्रता, दुआएं, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना जो सभी से जुड़ गया है, सभी खजानों से जुड़ गया है श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। जानते हैं सभी श्रेष्ठ संकल्प क्या है? मैं जब कभी कभी स्कूल कॉलेजों में जाता हूँ तो टीचर्स भी होते हैं, बड़े स्टूडेंट होते हैं, मैं जब उन्हें बताता हूँ कि अच्छे विचार आपके पास होने चाहिए, मैं पूछता हूँ अच्छे विचार सुनाएंगे? तो टीचर सहित लोगों से आता ही नहीं। अच्छे विचार किसे कहते हैं? एक दो सुनाए बस खत्म हो गया। श्रेष्ठ विचार कहाँ मिलेंगे हमें? कहाँ है आपके पास श्रेष्ठ विचारों का भंडार? आपके पास है मुरलियों में, अव्यक्त मुरलियां विशेष रूप से श्रेष्ठ संकल्पों का अथाह खजाना समाये हुए हैं। सुंदर सुंदर विचार हैं उनमें, उनकी स्टडी करें। अपने विचारों को अच्छा महान श्रेष्ठ बेहद का बनाते चलें। छोटे विचार मनुष्य के लिए बड़े कष्टदायी होते हैं। विचारों का कई स्तर हो सकता है। हमारे पास तो बहुत महान महान विचार भी हैं। इस संसार को साक्षी होकर देखो, सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। सबके पार्ट को देखकर आनंदित रहो। बहुत बड़े बड़े सुंदर विचार हमारे पास हैं। इस तरह सभी खजाने जमा करते रहेंगे। अब समय तो खत्म हो रहा है क्लास का, मैं आपको याद दिला दूं बाबा की मुरली की एक बात, तीन बिंदी लगाओ खजाने बढ़ाओ। बाबा के महावाक्य है ये, तीन बिंदी। सभी चिंतन करेंगे बाबा को कैसे यूज करें जो मन शांत रहे, ड्रामा को कैसे यूज करें जो मन शांत रहे, आत्मा का ज्ञान आत्मा बिंदी है उसमें कैसे स्थित हों जो मन शांत रहे। फाइनली परिणाम स्वरूप हम समझ लें, जिसका मन जितना शांत है, जिसके मन में जितने सुंदर विचार हैं, उसके ईश्वरीय खजाने उतने ही ज्यादा हैं। जब हम आत्मा बिंदी में स्थित हो जाते हैं तो हमारे सभी संकल्प आत्मिक स्वरूप में समाकर शांत होने लगते हैं। चित्त को शांत करने का ये बहुत सुंदर तरीका है। आपको बता दूं, विस्तार तो भी नहीं कर सकते। किसी किसी को पास्ट की बहुत याद आती है, पास के अनेक चिंतन आत्मा को परेशान करते हैं। यदि हम आत्मा हो जाएं, मैं आत्मा हूँ सोचने से काम नहीं चलेगा, मैं आत्मा इस शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। थोड़ी देर के लिए आप एक संकल्प किया करें, बहुत अच्छा संकल्प है, बिल्कुल अंतिम समय का सीन इमर्ज करें, सब कुछ समाप्त हो गया, रह गई मैं निराकार आत्मा। जैसे आप इस स्वरूप में आएंगे, पास्ट का सारा ही चिंतन इस निराकारी स्वरूप में समाकर लोप हो जाएगा। जितनी बार आप इसका अभ्यास करेंगे, आप पाएंगे जो बीत गया उसका प्रभाव तेजी से समाप्त होने लगा, वो प्रभावहीन हो गई बातें, जो बातें आज तक आपको भारी लगती थी वो सरल लगने लगेंगी। तो इन तीन बिंदियों का प्रयोग करते हुए सभी खजाने बढ़ाएंगे। फिर लास्ट में आपको वो बात याद दिला देता हूँ, सभी अपने से बातें करेंगे, प्रभु मिलन के दिन कैसे बीत रहे हैं। ओम शांति।